आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। झारखंड में विधानसभा के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो रहे चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। झारखंड में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। इस चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 9 बजे तक राज्य में 12.71% मतदान दर्ज हुआ। उधर महाराष्ट्र में भी सभी 288 सीटों के लिए एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। यहां 6.61% मतदान दर्ज किया गया है। इस बार कुल 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तराखंड की कुल 15 विधानसभा सीटों के लिए भी आज ही उपचुनाव हो रहा है। सभी राज्यों के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो दे जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद 3 दिन की यात्रा पर गयाना पहुंच गए हैं। वर्ष 1968 के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली गयाना यात्रा है। श्री मोदी गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान के साथ वार्ता करेंगे। वे दूसरे कैरीकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कैरीकॉम कैरेबियाई समुदाय और साझा बाजार से संबंधित 20 विकासशील देशों का समूह है। प्रधानमंत्री गयाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में स्थायी विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सबके लिए अधिक स्वच्छ और सतत भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने पर बल दिया। भारत पेरिस संधि की प्रतिबद्धताएं पूरी करने वाला समूह का पहला देश है। श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कल ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से अलग दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कौशल, खेल, अंतरिक्ष तथा जनसंपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नए परमाणु सिद्धांत के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रेमलिन वेबसाइट पर प्रकाशित आदेश में कहा गया है कि किसी राष्ट्र या सैन्य गठबंधन अथवा ब्लॉक द्वारा रूस या उसके सहयोगी देशों पर किए गए हमले को समूचे ब्लॉक का हमला समझा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है किसी गैर परमाणु राष्ट्र द्वारा परमाणु राष्ट्र की भागीदारी या सहायता से रूस के खिलाफ किए गए हमले को संयुक्त आक्रमण समझा जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत 20,58,000 नए कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस योजना से 9% अधिक कर्मचारी जुड़े हैं। कुल कर्मचारियों में से लगभग 49% 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार देश और विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में उभरने को तैयार है। विश्वविद्यालय की शीर्ष संस्था की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये विश्वविद्यालय उद्योग और रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा, जिनमें रेलवे, विमानन, राजमार्ग, जहाजरानी और रक्षा क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार अगले 5 वर्ष में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी करने का भी फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने भी इस संबंध में नए अनुदेश जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने 10 उद्योगों में 85,083 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी है। बोर्ड की पहली बैठक कल मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई। इन परियोजनाओं से राज्य में 33,966 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सवेरे 422 दर्ज हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 को पार कर गया। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 23 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में आज तूफान के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की आशंका व्यक्त की है। असम और मेघालय में भी आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार के राजगीर में महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने जापान को और चीन ने मलेशिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।